बाड़ा कुछ ललन टॉप सुनते हैं।
खबर आती है कि दो विरोधी नेता मिले, खुशी खुशी फोटो खिंचाई, पर मैं सोचता हूँ कि ये इतना जो मुस्कुरा रहे हैं, क्या इमोशंस हैं जो छिपा रहे हैं। पॉलिटिक्स में जनता को फैसले और फरमान सुनाए जाते हैं, लेकिन मिनट्स ऑफ मीटिंग्स कोई नहीं बताता। मैं बताता हूँ क्या हुआ उस बैठक में जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी की प्रचार समिति का प्रमुख बनाया गया। ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि मुलायम सिंह यादव ने मंच पर एक दरोगा को उठाकर पटक दिया। आखिर क्या हुआ कि कांग्रेस को अपनी वर्किंग कमेटी की मीटिंग अचानक रोकनी पड़ी। सुनिए ऐसे तमाम पॉलिटिकल किस्से बाजा पर मेरे यानी सौरभ द्विवेदी के साथ।
मुख्यमंत्री नंगा क्यों हुआ, प्रधानमंत्री वरिष्ठ नौकरशाह पर नाराज क्यों हुआ, और सदाबहार मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा समय तक एक वक्त में मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले नेताजी को बच्चों के लगाए एक नारे का और उसके अखबार में छपने का बुरा क्यों लगा। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं thelallantop.com के पॉलिटिकल किस्से। नई खेप वरिष्ठ पत्रकार सुमन चट्टोपाध्याय की किताब डेट विद हिस्ट्री से, जिसे रूपा पब्लिकेशन ने छापा है। पहला किस्सा प्रताप सिंह कैरो से जुड़ा हुआ। कैरो उनके गांव का नाम, जिला अमृतसर। अमेरिका में पढ़ाई की, वापस आए तो आजादी के आंदोलन में लग गए, नेहरू के करीबी मुख्यमंत्री बने और जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ पंजाब में उसके अगुआ, उसके जनक बने। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ एक वाटर रेवोल्यूशन भी हो रहा था जो इस ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक था, वो था भाखड़ा नांगल डैम का प्रोजेक्ट। नेहरू इन्हें आधुनिक भारत का तीर्थ और मंदिर कहा करते थे। जब भाखड़ा नांगल डैम जोर शोर से बन रहा था, तभी उतने ही जोर शोर से खबरें मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो के इर्द गिर्द के लोगों के भ्रष्टाचार की भी आ रही थी। अखबारों में लगातार इस तरह की खबरें छप रही थी। इल्जाम लग रहे थे कि प्रताप सिंह कैरो के रिश्तेदारों को कॉन्ट्रैक्ट देने में उनके साथ पक्षधरता हुई है, उनको फायदा पहुंचाया गया है। ये खबरें नेहरू तक भी पहुंची और उन्होंने प्रताप सिंह कैरो को दिल्ली तलब किया। कैरो दिल्ली आए, नेहरू से मिलने से पहले मिले कुछ पंजाबी भाषा के पत्रकारों से। उन पंजाबी भाषा के पत्रकारों को बुलाया गया पंजाब भवन में। जब वो सारे पत्रकार मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो के कमरे में पहुंच गए तो कैरो ने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद पत्रकारों की तरफ पलटे, सारे कपड़े उतार दिए, फिर बोले, मेरे भाई जो करना है अभी कर लो, लेकिन भाखड़ा नांगल बांध का विरोध करना बंद कर दो। इस किस्से को INS बिल्डिंग में टेलीग्राफ के ब्यूरो चीफ केवल वर्मा ने सुनाया था सुमन को। सुमन को यह प्रकरण सुनाया गया था जब बोफोर्स मामला और उसमें प्रधानमंत्री के शामिल होने या ना शामिल होने को लेकर नित नए इल्जाम लगाए जा रहे थे। प्रताप सिंह कैरो की जिंदगी बहुत महाकाव्यात्मक है। कैसे शुरुआत हुई उनकी, उन्होंने अमेरिका में कैसे बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए खेती होते हुए देखी, और फिर नेहरू की करीबी और उनके विश्वास के चलते कैसे वो अपना एजेंडा लागू कर सके। और जैसे ही निजाम बदला, नेहरू की मौत हुई, शास्त्री आए, वो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हुई जिसमें ज्यादातर मामलों में उन्हें बरी कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद शायद वो समझौते की शर्त जैसा कुछ रहा होगा, उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। और उसके कुछ ही महीने के बाद फरवरी 1965 में दिल्ली से जाते वक्त उनका कत्ल कर दिया गया। जब लल्लन टॉप के सियासी कत्ल वाली वेब सीरीज लॉन्च होगी तो उसमें प्रताप सिंह कैरो के कत्ल के बारे में भी बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री राजीव गांधी की। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के राजनीतिक आरोहण का एक बड़े पल का गवाह बना था कलकत्ता। जी, तब कोलकाता को कलकत्ता कहा करते थे, और उस कलकत्ता में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मम्मी जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और तब राजीव सिर्फ अमेठी के सांसद और महासचिव हुआ करते थे, उन्होंने देखा कि जिस तरीके से संजय गांधी की वाहवाही होती थी, चाहे वो गुवाहाटी वाला सम्मेलन हो चाहे चंडीगढ़ वाला सम्मेलन हो, वैसे ही राजीव का भी स्वागत होना चाहिए, और कोलकाता के अधिवेशन से उसकी शुरुआत हो गई थी। तो राजीव का एक नाता जुड़ गया पश्चिम बंगाल की राजधानी से। नाते को और प्रगाढ़ता देने के लिए राजीव गांधी ने 1986 से पश्चिम बंगाल का धुआंधार दौरा करना शुरू कर दिया। वजह 1987 में होने वाले विधानसभा चुनाव। कांग्रेस को यह खुशफहमी हो गई थी। कांग्रेस के सूबे के प्रदेश अध्यक्ष प्रियरंजन दास मुंशी को यह खुशफहमी हो गई थी कि अब 10 बरस पुराने वाम किले को ढाया जा सकता है। राजीव गांधी जहां भी जाते मजमा लग जाता उन्हें देखने के लिए। उनके पास एक जोंगा कार थी जो जॉर्डन के राजा ने उन्हें तोहफे में दी थी। राजीव वही चलाते थे। ड्राइविंग सीट पर राजीव, बगल में भारतीय परिधानों में सोनिया गांधी, पीछे प्रियरंजन दास मुंशी और उनके बगल में एक कमांडो। पीछे बैठे प्रियरंजन दास मुंशी को कभी याद आता होगा कि जब वो आगे आना चाह रहे थे यूथ कांग्रेस की सियासत में, तो इन्हीं राजीव के भाई संजय ने उनके पर कतर दिए थे। संजय के निर्देश पर प्रियरंजन दास मुंशी को इस्तीफा देना पड़ा था और तब अंबिका सोनी यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी। बहरहाल वो बीते दिनों की बात थी। प्रियरंजन दास मुंशी का पुनर्वास हो चुका था और एक नेता जो पाइप पीते पीते पहले उनकी माता जी का बहुत करीबी रहा था और सबसे वरिष्ठ मंत्री का ओहदा पा चुका था, जो बाद में देश का राष्ट्रपति बना, ऐसे प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक वनवास शुरू हो चुका था। प्रियरंजन दास मुंशी ने राजीव गांधी के दिमाग में ये बात भर दी थी कि अगर जोरदार प्रचार किया जाए, खुद प्रधानमंत्री, नौजवानों में लोकप्रिय राजीव गांधी ज्योति बसु को चुनौती देने आ जाएं और राज्य के पिछड़ेपन के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराने में सफल हो जाएं, तो ज्योति बसु की सरकार को गिराया जा सकता है। इसी क्रम में गांव-गांव भटकते थे राजीव गांधी अपनी जोंगा कार से। एक बार उनका कारवां जा रहा था और अचानक से उन्होंने गाड़ी रोक दी। चूंकि प्रधानमंत्री के काफिले का कुछ प्रोटोकॉल था, सुरक्षा की बातें थी, इसलिए जो पीछे की कारें थी उन्होंने और भी तेजी से ब्रेक लगाया। हुआ इसमें यह कि जो पीछे की कारें थी उन सब के बम्पर बोनट आपस में टकरा गए। सब लोग भड़बड़ा के नीचे उतरे कि आखिर हुआ क्या। उन्होंने देखा कि एक सीनियर आईएएस अधिकारी चुपचाप सड़क के किनारे से एक पॉलिथीन का पैकेट उठा रहे हैं और उसे वापस अपनी कार में रख रहे हैं। बाद में स्टाफ से बातचीत की गई तो पता चला कि ड्राइव करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने रियर व्यू मिरर में देखा था कि पीछे वाली कार में बैठे आईएएस साहब, उन्होंने लंच पैकेट को सड़क पर फेंक दिया। प्रधानमंत्री को यह रवैया बहुत खराब लगा और डपटने के लिए उन्होंने अचानक से कार रोक ली। नरेंद्र मोदी खुश हो सकते हैं कि उनके युवा कांग्रेसी मित्र राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी भी व्यक्तिगत व्यवहार में ही सही, स्वच्छता के लिए काफी सतर्क थे। स्वच्छता से आगे बढ़ते हैं सियासत के तीसरे नायक की तरफ, जिसका नाम है ज्योति बसु। ज्योति बसु वकालत की पढ़ाई करने लंदन गए, वहीं पर उनकी फिरोज और इंदिरा से मित्रता हुई और ये मित्रता अलग अलग पार्टी होने के बावजूद कायम रही। और इसीलिए 1987 में जब राजीव गांधी लगातार ज्योति बसु पर हमलावर हो रहे थे, तब ज्योति बाबू को बहुत बुरा लग रहा था। उन्होंने भी एक दिन रिटॉर्ट करते हुए कह दिया कि अब पायलट हमें राज्य चलाना और यहाँ की अर्थव्यवस्था को संभालना ना ही सिखाएं तो बेहतर है। लेकिन यही ज्योति बाबू जो कठोर से कठोर राजनीतिक हमलों को अपने व्यंग बाणों से निस्तेज कर दिया करते थे, वो बच्चों के नारों से बहुत नाराज हो गए थे। ये बात है पश्चिम बंगाल की सतगछिया सीट की। 1977 से ज्योति बाबू लगातार यहीं से चुनाव लड़ रहे थे और मुख्यमंत्री का पद छोड़ने तक वो लगातार यहीं से विधायक रहे। यहाँ पर बच्चे ज्योति बाबू के प्रचार गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए एक नारा लगाया करते थे बंगाली भाषा में, ज्योति बाबू नमस्कार, पांच बौछारे एक बार। इसका मतलब ये हुआ कि ज्योति बाबू आपको हम नमस्कार करते हैं क्योंकि आप पांच साल में सिर्फ एक बार नजर आते हैं। ये नारा स्थानीय कांग्रेसियों ने ईजाद किया था। सुमन जो उस वक्त एबीपी ग्रुप से जुड़े हुए थे, आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप से, और चुनाव कवर करने गए थे, उनको ये नारा रोचक लगा और उन्होंने अपनी कॉपी की शुरुआत इन्हीं पंक्तियों से की। और ज्योति बसु जो कभी भी आनंद बाजार पत्रिका को या किसी भी दूसरे अखबार को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया करते थे, वो इससे बेतरह नाराज हुए और उन्होंने उस अखबारी ग्रुप के मालिक को फोन किया और कहा कि बच्चों के गढ़े नारे को इतनी अहमियत देने की क्या जरूरत थी, ये किस किस्म की पत्रकारिता हो रही है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का तो पता नहीं, मगर दिल्ली को ठिया बनाकर नई हिंदी, नए तेवर, नए कलेवर के साथ दी ललन टॉप अपनी पत्रकारिता जरूर कर रहा है। छौनों के जैसे कदम होते हैं, थोड़े संभले, थोड़े उतावलेपन से भरे हुए, वैसे ही कदम आगे बढ़ा रहा है और ये कदम चुनाव में खास तौर पर कुलांचे भरने लगते हैं, और जब चुनाव नहीं होते हैं तब पॉलिटिकल किस्से होते हैं। अगर आपको ये पॉलिटिकल किस्सा पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने कमेंट बॉक्स में राय से भी अवगत करवाइए। आप हमें ये भी बता सकते हैं कि वो अगली बारी किसकी हो जिसकी जिंदगी पर हमारी नजर घूमे और उसका पॉलिटिकल किस्सा लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हों। जो साथी अभी तक फेसबुक पर दी ललन टॉप के पेज से तैयारी नहीं कर पाए हैं वो भी ये काम जल्दी से कर दें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और उन दोस्तों को जरूर टैग करें, उनको जरूर मेंशन करें कमेंट बॉक्स में जिनकी सियासत में दिलचस्पी है या जिन्हें ये प्रकरण रोचक लग सकते हैं। जो साथी यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं वो दी ललन टॉप के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी पॉलिटिकल किस्से अपलोड हों आपको फौरन से खबर हो जाए। शुक्रिया।
सत्ता के गलियारों और गर्भगृह की कुछ और खुराफातों कुछ और किस्सों के साथ अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे मंगलवार के रोज। सुनते रहिए पॉलिटिकल किस्से, सुनते रहिए बाजा।
बाजा कुछ ललन टॉप सुनते हैं।